محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے مولانا روم کے دیس میں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ عرفہ سے نکل کر سروج تک کا سفر رہا، پھر واپسی عرفہ میں ہوئی اور بھاگتے بھاگتے کھانا کھایا ہے اور بس میں بیٹھنے کی جلدی تھی کیونکہ آج رات کونیا کے لیے نکلنا تھا۔
مولانا روم کے دیس میں
رات کے 10 بجے کونیا جانے والی بس میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی آرام دہ بس تھی اور ایک نیا تجربہ تھا کہ ہمارے ہاں جو بسیں ہوتی ہیں اس میں تو بڑے تھکے تھکے ایسی ہوتے ہیں، اور وہ تو بڑی سرد رات تھی تو ہم تو انرس پہن کے بیٹھے تھے گاڑی میں کہ جناب سنا ہے کہ بڑا مائنس ٹمپریچر ہے اور یہ نہ ہو کہ بس میں بس ٹھنڈی ہو جائے اور سردی ہونا شروع ہو جائے، لیکن پتہ ہی چلا کہ بس تو بڑی گرم ہے جناب۔ تو بڑی آرام دہ بس تھی، 10 گھنٹے کا سفر تھا۔ بس والا تعاون کرنے والا تھا اور 10 بجے یہ گاڑی روانہ ہوتی ہے اور ہم لائیو ٹمپریچر دیکھتے جاتے ہیں تو -5 باہر کا ٹمپریچر تھا۔ ایک جگہ پر اس نے گاڑی روکی، وہاں ہم نے چائے وغیرہ پی۔ ایک بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا اور یوں سمجھے کہ وہ منظر بھولے گا نہیں کہ رات کا -5 کا ٹمپریچر ہے اور اس پٹرول پمپ پر جو بھی گاڑی آتی ہے، یعنی زیادہ تر بسیں آتی تھیں، تو ایک بندہ پائپ لے کر کھڑا ہوا ہے اور بسوں کے ٹائر دھو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کا یہ عرف ہے، رواج ہے، یا بسیں بہت دور سے چل کر آتی ہیں ان کے ٹائر گرم ہو جاتے ہوں، یہ وجہ تھی، لیکن وہ باقاعدہ سرف سے دھو رہا جناب۔ تو میں حیران ہوا کہ روزی روٹی کے لیے اس سخت سردی کے اندر -5 کے ٹمپریچر کے اندر یہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹائر دھو رہا ہے۔ تو یقینی طور پر رزق حلال کمانے والے محنت کرتے ہیں، آسانیاں نہیں دیکھتے، رزق حلال ہی کماتے ہیں، حرام کی طرف نہیں بڑھتے۔ اب چونکہ یہ بس پیٹرول بھرنے کے لیے رکی تھی اور انہوں نے کہا کسی نے چائے وائے پینی ہے تو جا کر پی لیں۔ اب ہم لوگ جو کیفیٹیریا تھا، ہوٹل نما تھا ایک، وہاں پر آئے، چائے کا پوچھا کہ بھائی چائے کتنے کی دے رہے ہو، تو اس نے کہا غالباً 1 لیرا کہا تھا، 1 لیرا کی چائے ہے۔ اچھا جب وہ چائے آئی تو پتا چلا کہ وہ تو کہوا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ بھائی دودھ ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا ہاں دودھ بھی ہے، تو اس نے لا کے دودھ ڈال دیا۔ اب جب ہم واپس جانے لگے اور بل پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب اب تو چائے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ وہ جو 1 لیرا انہوں نے ریٹ بتایا تھا وہ تو بغیر دودھ کی چائے کا ریٹ بتایا تھا۔ لو جناب، ہم نے کہا کہ جناب ہمارے پاکستان میں تو تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں گے کہ چائے لاؤ اور وہ بغیر دودھ کی چائے لے آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے باہر دنیا کا ایک عرف، مطلب ہم جب ٹی کہیں گے، چائے کہیں گے، شائے کہیں گے تو ہمارے امراد یہ ہوتا ہے کہ جی دودھ والے چائے، لیکن ان کے ہاں جب چائے کہا جائے گا تو وہ اصل، چونکہ زیادہ تر بغیر دودھ کی پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں، اور بڑا قہوہ پیا جاتا ہے ان کی محفل میں، نجی محفلوں میں رکھا ہوتا ہے جناب، اور وہ پانی کی طرح پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشین کنٹریز میں چلے جائیں، یہاں بھی یہی معمول ہے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، بس روانہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے، خیر زیادہ تر تو سوتے رہے کیونکہ دن بڑا تھکا ہوا تھا اور اکثر لوگ سو ہی رہے تھے، گاڑی بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک دم فل ہو۔ البتہ ایک پریشانی تھی کہ ہم ماسک نیچے نہیں کر سکتے تھے، بس میں بھی جناب کنڈکٹر آ جاتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ماسک اوپر کریں، تو وہ مطلب اتنا 10-12 گھنٹے کا سفر اور ماسک پہنے پہنے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال پھر آگے جا کر فجر کے لیے گاڑی رکتی ہے، بس والے نے تعاون کیا، اچھا تعاون کرنے والا ڈرائیور تھا، تو اس نے ایک جگہ پر جا کر گاڑی روکی اور پوچھیے مت کہ بس پانی کتنا ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تھوڑا سا اجالا ہونا بھی شروع ہو گیا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جناب سفیدی چمک رہی ہے پہاڑوں پر، ارد گرد جہاں پہاڑ ہمیں نظر آتے تھے वहाँ सफेदी चमक रही होती थी कि मतलब हल्की हल्की बर्फबारी की अलामत थी। और तकरीबन 6:30 बजे या 7 बजे हम जो हैं वो कोनिया शहर पहुँच जाते हैं। अजीम शान शहर, एक तारीखी शहर, एक ऐसा शहर के जिसके बगैर इस्लामी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। कदीम खित्ते को यानी जो तुर्की का इलाका है इसे अनातूल कहा जाता था, अनातूल या अनातुलिया, और ये इलाका रोम भी कहलाता था। और हदीस में जो जिक्र होता है कि जनाब रोमियों से जंग हुई, फला से जंग हुई, तो ये पूरा इलाका ही अनातूल जो है वो रोम कहलाता था, जिसमें ये उर्फा वगैरह जो शहर हैं ये भी उसमें दाखिल होते हैं, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हमले भी यहाँ से हुए। वो तो खैर बहुत दूर था, उर्फा की तरफ तक तो दियारे बिकर उर्फा की तरफ तक तो आना हुआ है सहाबा इकराम अली मर्दवान का, लेकिन आगे जो है वो हो सकता आना हुआ हो। अनातूल बहुत बड़ा इलाका है, हम तो थोड़े से इलाके में गए हैं, कुछ और एरियाज भी थे इसकी तरफ जहाँ हम नहीं जा सके। 11वीं सदी में सल्जूकी हुकूमत यहाँ कायम होती है, और उससे पहले जो है वो सुल्तान अलिफ अरसलान, कोनिया के करीब ही एक इलाका था, वहाँ पर रोमियों से वो जंग लड़ते हैं, और 14,000 के लश्कर से उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा रोमियों का मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। सल्जुकी जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने कोनिया को अपना कैपिटल बनाया, यानी अनातोल का और पूरे रोम का जो कैपिटल था वो कोनिया बना। सुल्तान अलाउद्दीन अलिफ अरसलान ही की नसल से थे जो कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में हुक्मरान थे। अब मौलाना जलालुद्दीन रूम जो हैं, अब रूम का लफ्ज़ जो इनके साथ लगता है इसका यही पस मंज़र है जो मैंने अर्ज़ किया। असल में आपको मौलाए रूम कहा गया था, यानी मुल्क के रूम के सबसे बड़े आलिम मौलाए रूम के साथ साथ मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी मशहूर हो गया। तो यूँ मौलाना रूम, मौलाना रूमी, मौलाए रूम, ये तीनों चारों जो अल्फाज हैं एक लाहिके के तौर पर आपके साथ मिलते हैं। एक बड़ा कदीम शहर, आज भी इस शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम सलजूक यूनिवर्सिटी है। यानी सलजूकी पहले तो ये मंगोलों से थे, फिर बाद में इनकी नस्ल जो है वो मुसलमान होती है, और फिर ये आकर हुक्मरानी करती है, और ये रोमियों से लड़ती है, रोमियों से इलाके लेती है, और कोनिया को अपना कैपिटल बनाती है। उस जमाने में कोनिया इल्म व हिकमत के एतबार से भी एक मरकजी शहर था। कोनिया से ज़्यादा दूर नहीं हल्ब, मुराद ये है कि कोई 1,000 किलोमीटर का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हल्ब इल्म का मरकज़ था, बगदाद इल्म का मरकज़ था, कोनिया इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था। कोनिया आते हुए एक बड़ा ख़तरा हमें लाइक था, वो बड़ा ख़तरा ये था कि हम पहुँच रहे थे हफ्ते के दिन, और उस वक्त यानी 30 जनवरी बरोज़ हफ्ता 2021 जो तुर्की में सूरत हाल थी, 2 दिन का वो लॉकडाउन लगाते थे। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन लगता था, और पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन नहीं होता था, कर्फ्यू की तरह होता था। कोई शहरी घर से भी नहीं निकल सकता, टूरिस्ट को इजाज़त होती थी कि वो बाहर निकल सकते हैं किसी परमिशन के बगैर, गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत चल रही होती थी, दुकानें बंद, कुछ चिदा चिदा होटल या बेकरी खुलती थी, परमिशन के साथ सब बंद होती थी।
मौलाना रोम के देश में।
ले जी, हम एक कोनिया के कदीम मोहल्ले में आ गए हैं, और मामला ये है कि हड़ताल जैसा समय है, क्योंकि हफ्ते और इतवार को यहाँ फुल लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू का समय होता है, बहुत ज़रूरी लोग निकल सकते हैं, वरना फ़ाइन है, और टूरिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं होती सहूलत से, तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोड खाली है, ये एक जगह है जहाँ पर जो है सलजुकियों के मोहल्ले हैं। कुनिया की अपनी तारीख है, एक ये जो इलाका कुनिया चुके एक पूरे खत्ते का कैपिटल हुआ करता था। सुल्तान अलाउद्दीन जो है, वो सुल्तान अलाउद्दीन जिसने अर्तुगरुल गाजी को सगौत के इलाके की जागीर दी, फिर सुल्तान अलाउद्दीन ही ने उनके जो बेटे थे उस्मान गाजी, उनको जो है वो बुरसा में एक छोटी सी रियासत कायम करने की इजाज़त दी, खुद मुख्तार बनाया उन्हें, उनकी हौसला अफजाई फरमाई। तो ये कुनिया जो इलाका है बिल्कुल सेंटर में तुर्की की और कदीम इलाका है। यहाँ से देखिए ये मस्जिद है, पुरानी कदीम मस्जिद है, सलजुकियों के दौर की बनी हुई मस्जिद है ये, और अब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये सन्नाटा लगा हुआ है जनाब सड़क पे एकदम। और
मौला रोम के देश में।
अब हमारे पास कुनिया में ये दो दिन थे, एक हफ्ते का और एक इतवार का, उसके बाद हमने आगे निकल जाना था। अब खतरा ये लाहिक कि जा तो रहे हैं, ये ना हो कि मज़ार शरीफ भी बंद हो, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मज़ारात हमें बंद भी मिले। अब इस खटका भी था और सोचा कि अगर मज़ार बंद हुआ तो चलें बाहर से हाज़िरी दे लेंगे, सहन में बैठकर हाज़िरी दे लेंगे, और जो कुनिया की फ़ज़ाएँ हैं चलें ये जाकर इसकी बरकतें लेते हैं। तो हम अपने होटल पहुँचते हैं, चूँकि लॉकडाउन का भी दिन है, तो बस से उतरने के बाद हम अपने होटल पहुँचते हैं और सबसे पहले तो उससे ये पूछते हैं कि मज़ार खुला है कि बंद है। तो उसने कहा कि नहीं, मज़ार खुला होगा, टूरिस्ट जा सकते हैं। होटल वाले से बार्गेनिंग करते हैं, हालांकि वो रेट ज़्यादा नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चूँकि टूरिस्ट कम हैं और लोग कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा और बार्गेनिंग की जाए। तो एक और होटल वाले से भी हमने जाकर पूछा, फिर हम इसी में दोबारा आ गए और बिलाखिर हमने टू नाइट्स का होटल जो है वो लिया और जाकर अपने कमरे की खिड़की खोली, तो वही मंजर था जो सुना था कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार हमें वहाँ से नज़र आ रहा था। आइए उसका नज़ारा करते हैं।
मौलाना रूम के देश में।
कुनिया की सुबह है और कुनिया की जो सुबह है, हमारे होटल की खिड़की खुलती है और मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला जो हैं वो सामने हैं। मैं दिखाता हूँ मंजर, ये देखिएगा जी, ये खिड़की खुली और ये सामने जो है मंजर है, ये मस्जिद है और ये दूर पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। कुनिया का शहर है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला का शहर है। बारिश सारी रात बरसती रही है।
मौलाना रूम के देश में।
वैसे तो बस में हमारी नींद हुई थी रात भर, और उससे पहले अगर आप 28 जनवरी को देखें, और ये जो प्रोग्राम है एक तरह से ट्रेवल लॉग ही है, तो YouTube पर पिछली किस्तें भी रखी हुई हैं। मुफ्ती अली असगर के नाम से YouTube चैनल है, आप वहाँ देख सकते हैं।
मुफ्ती अली असगर के तमाम TV प्रोग्राम, सेमिनार, बयान आप देख सकते हैं मुफ्ती साहब के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
तो आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी कितना मसरूफ दिन रहा और कितनी कम नींद रही, और फिर 29 जनवरी सारा दिन मसरूफ रहा, और 29 की जो रात है यानी 29 और 30 की दरमियानी रात शबे हफ्ता ये बस में ही गुजरी है। नाश्ता करने के बाद हमने कहा कि अब क्या सोएंगे, थोड़ी तैयारी करते रहे, गुस्ल वगैरह किया, कपड़े तब्दील किए, और करते करते जोहर की अजान हो जाती है। हमने जाकर नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर जो है मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला के मज़ार के अहाते के साथ ही बड़ी ही कदीम मस्जिद है, और ये वो मस्जिद है जिसे सुल्तान सलीम ने तामीर करवाया था। मस्जिद सलीम कहते हैं इसे। और तुर्की जो मस्जिदें होती हैं वो एक ख़ास फॉर्मेट पे बनी होती हैं, यानी वो बिल्कुल उनके बीच में सतून नहीं होते और दीवारों से वो पूरा गुंबद उठकर ऊपर तक चला जाता है, ये उनका एक अंदाज़ होता है। नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद हमने देखा तो वाह, ये तो हमारी ईद हो गई है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई नहीं। और हम दाखला हुआ हमारा मज़ार के आते में, वहाँ से हम आए, क्योंकि मज़ार पर भी टूरिस्ट के अलावा इन दो दिनों में किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह अकबर, मतलब उस बारगाह में हम आए हैं कि जिनका आलम में शोहरा है, जो इल्म व फ़न के इमाम हैं, जो रूहानियत में आला मकाम रखते हैं, जो सुल्तानुल आरिफीन हैं, वो हस्ती हैं कि जिनकी मसनवी इल्म व हिकमत से पुर है और जिनकी मसनवी में मतलब कि वो रूहानियत के दरिया बहते हैं कि कोई उसमें डुबकी लगाने वाला हो, उस हस्ती की बारगाह में हम आए हैं। सन्नाटा है, रश नहीं है, यानी हमने जब हाज़िरी दी और हम बाहर निकले कई घंटों के बाद, तो हमारे एक साथी साथ थे, वो वहीं के थे मकामी, कहने लगे कि यहाँ 5 मिनट बंदा नहीं खड़ा हो सकता। बड़ा हमने गनीमत जाना इस फुर्सत को और इस रश ना होने को। हाज़िरी दी और हम बिला मुबालगा घंटों वहाँ बैठे रहे। मज़ारात तो बहुत सारे मज़ारात पर हाजिरी हुई है, मैं बात अम्बिया अलैहिम सलाम की मज़ारात की नहीं कर रहा, सहाबा इकराम अली मर्दवान की नहीं कर रहा, अगरचे कि जो बगदाद शरीफ में जो मज़ारात हैं, ख़ास तौर पर जो अहले बैत अतहार के मज़ारात हैं, वहाँ जितना ज़्यादा सोने का काम होता है अल्लाह अकबर, तो इतना सोने का काम किसी मज़ार पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला का मज़ार था, जिस खूबसूरत अंदाज में खत्ताती नक्शकारी और जिस खूबसूरत अंदाज में तोरे वहाँ रखे गए थे, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतना हसीन मंज़र कहीं नहीं देखा होगा। हर दीवार पर एक अलग नज़ारा, लेकिन कहिए कि हर फिट के बाद एक अलग नज़ारा, एक अलग मंज़र, रंगों का हसीन इम्तिजाज, खताती का एक आला से आला नमूना, मज़ार पर रूहानियत ही रूहानियत थी, उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था। हम जब तक मतलब के ज़ोक बरकरार रहा फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद, वहीं पर मौलाना रूम की खिदमत में बैठे रहे और इनकी तवज्जो चाहते रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ के सामने ही कुछ तबर्रुकात रखे हैं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह तआला अलैह का जुम्बा शरीफ है, इनसे मनसूब और कुछ चीज़ें हैं, मसनवी के कुछ नुस्खे हैं, कुछ और कुतुब वगैरह भी रखी हैं वहाँ पर। आइए उसको भी देखते हैं वहाँ पर हमने क्या देखा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला के मज़ार के साथ ही इनके वालिद माजिद हज़रत मौलाना बहाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला का मज़ार भी है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला के 3 बड़े मशहूर तलामिज़ा, इनके शागिर्द और स्टूडेंट्स थे, उनका मज़ार भी यही है। उनमें से एक थे हज़रत हुसामुद्दीन चलपी रहमतुल्लाह तआला, एक हज़रत ज़रकूब रहमतुल्लाह तआला और एक जिनका नाम या लकब जो मशहूर है वो था सिपह सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह। जो हुसामुद्दीन चलपी हैं मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में इनका बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ा इनका तस्करा करते हैं, और कहा जाता है कि 14 अशआर जो हैं वो यानी मसनवी इनके कहने पर लिखी गई या मौलाना ने लिखी थी, किताबी सूरत नहीं दी थी, तो एक बड़ा इनका एक ताल्लुक था हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह से। मज़ार शरीफ पर इसके अलावा भी कुछ कब्रें थीं। एक अजीब बात यह थी कि कुछ कब्रें वो थीं, तुर्क हजरात जो हैं वो जो मज़ारात बनाते हैं तो फिर एक एज़ाज़ के तौर पर, इकराम के तौर पर कब्र पर इमामा भी रखा जाता है, तो कुछ कब्रों पर इमामा रखा हुआ था और कुछ पर नहीं रखा हुआ था। एक साहब वहाँ पर रहते थे तो पाकिस्तानी, उन्होंने हमें बताया कि ये असल में जो ख़वातीन की कब्रें होती हैं उस पर फिर इमामा नहीं रखते और बकिया पर फिर इमामा रखते हैं।
मौला रोम के देश में,
मौला रोम रहमतुल्लाह ताला का जो मज़ार है, जो उसका दिलकश नज़ारा है, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत और जाज़िब नज़र है कि बाज़ लोगों को वहम हो गया या बाज़ लोगों ने तस्वीरें लेकर जब शाया की होंगी तो मशहूर कर दिया किसी ने कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो कब्र अनवर है ये वो है। नहीं, वो जो तस्वीर बड़ी मशहूर मनसूब की जाती है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की तरफ, वो असल में मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो तो कोई देख ही नहीं सकता। वजह उसकी ये है कि जो जालियाँ हैं, एक तरफ सुनहरी जालियाँ, बाकी सब जालियाँ, उसके अंदर फिर एक कमरा है, फिर एक दीवार है और उस दीवार पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, इस दीवार से आगे कोई भी नहीं जा सकता। सिसा पिघलाई हुई एक दीवार आती है, कब्र अनवर किसी ने नहीं देखी सिवाय इसके कि जब सल्तनत उस्मानिया के दौर में काम हुआ एक मरतबा तो कुछ हिस्सा खोला गया था, और अलबत्ता इतना ज़रूर था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर जो गुंबद खजरा है, इस गुंबद खजरा में खिड़की है, उस खिड़की से कुछ साल पहले, यानी कुछ साल पहले तक ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, ऐसा होता था कि एक चादर डाली जाती थी रस्सी के ज़रिए और एक साल के बाद वो निकाल ली जाती थी। तो ये एक वाहिद रास्ता है खिड़की वाला। गुंबद खजरा की तस्वीर आप देखें, जूम होकर आपको दिखाई जा रही है, ये असल में एक जाली लगी हुई है, यहाँ पर एक जंगला लगा हुआ है और इससे वो डाली जाती थी चादर मुबारक और फिर वो चादर निकाल ली जाती थी। तो ये असल में ये जो तस्वीर मशहूर है मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला की कब्र मुबारक की तस्वीर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला के मज़ार पर हमने आज भी हाज़िरी दी, यानी आज बरोज़ हफ्ता 30 जनवरी 2021, और हम अगले दिन दोबारा आए इस मज़ार पुर अनवार पर।
मौलाना रोम के देश में।
मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला कौन थे, कहाँ पैदा हुए, आप बलख में पैदा हुए, फिर यहाँ कैसे आए, कैसे इशोरा हुआ, और वो जो एक आपका रंग था कि आप एक बहुत बड़े आलिम ज़ाहिर से एक आलिम बातिन कैसे बने, ज़िंदगी में इनकलाब कैसे बरपा हुआ, आपके मुर्शिद हज़रत शेख शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला कैसे आपके पास आए, अगली किस्त में इसको हम तफसील से बयान करेंगे। और वहाँ मज़ार शरीफ पर खड़े होकर अगले दिन जो है वो तकरीबन 55 मिनट मौका मिला मुझे मज़ार शरीफ के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर मौलाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पर, आपके तस्करे पर, आपकी सवाने उम्री पर मैंने बयान करने की साथ हासिल की अपने साथियों के हमरा, एक तरह से एक मदनी हल्के की सूरत थी। और वहाँ पर हम जो है वो मौका मिला, उस वीडियो से भी कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ कि उसके बाद फिर क्या हुआ।
से खुदा से
ہم مزار سے نکلے ہیں. ہم مزار سے نکل کر وہ ساتھی آ چکے تھے, پاکستانی ساتھی, ان سے ہم نے ملنا تھا, تو ان کے پاس ہم پہنچے اور وہ ہمیں لے کر گئے. مطلب پیدل کوئی 5-7 منٹ کا راستہ تھا. مولانا کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر, یہ مزار شریف تھوڑی ہی دور واقع ایک مسجد کے احاطے میں موجود ہے. یعنی ہوگا یہ کہ مسجد جو ہے وہ الگ ہوگی اور مزار الگ ہوگا, پھر مسجد کو وسعت دینے کی جب کا موقع آیا ہوگا تو دیواریں وغیرہ گرا کر صفیں پیچھے کر دی گئی ہوں گی. مزار اب بھی سائڈ میں صفوں میں نہیں ہے, لیکن باؤنڈری ایک ہی ہے تقریباً. مسجد ہی کی جو جا نماز ہوتی ہے اسی کی باؤنڈری میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. حضرت شمس تبریز, تبریز جو ہے وہ ایران میں ایک علاقہ ہے. حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق وہاں سے تھا. ملتان میں ایک مزار مشہور ہے اسی نام سے. یہ وہ شمس تبریز نہیں ہے کہ جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد ہیں. یہ کون ہے ہمیں تو نہیں پتہ کون ہے. تو مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مرشد کامل ہیں, وہ مرشد ہیں کہ جو آ کے اپنے مرید کی تقدیر بدل دیتے ہیں, پورا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. مولانا کیا سے کیا بن جاتے ہیں. اور پھر مثنوی شریف میں بھی مرشد کی محبت, مرشد مرشد ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے. مولانا پھر کیا خوب کہتے ہیں, پیر جو ہم پیر ہے, جو ہم پیر پیر. اور پھر کیا ان کی شان ہے حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کئی چیزیں ملتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غائب ہو گئے تھے وہاں سے اور پتہ ہی نہیں کسی کو یہ کہاں تھے, لیکن ایسا نہیں تھا, یہ وہاں موجود ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف میں ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ایک واقعے سے استشہاد کیا ہے. یعنی اتنے بڑے امام ہیں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی ویسے تو فقہ میں بھی ایک کتاب ہے اور اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے استدلال کیا ہے فیہ ما فیہ. تو ایک مسئلہ آپ سے پوچھا گیا قطع تعلق کے بارے میں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دینی وجہ سے قطع تعلق کیا جائے تو یہ جائز ہے. فرمایا مولانا شمس تبریز کو کس نے قتل کیا تھا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو صاحبزادے تھے, ایک کا نام سلطان تھا اور دوسرے کا نام علاء الدین تھا. سلطان تو بڑا نیک صفت لڑکا تھا, نیک صفت بندہ تھا, لیکن علاء الدین جو تھا آپ کا لڑکا وہ بہت شریر تھا, اور اسی نے کسی وجہ سے آپ کے محسن, آپ کے مرشد, آپ کے ہادی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا تھا. آپ اس کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا, قطع تعلق کیے رکھا اس سے, کیونکہ یہ قطع تعلق دینی وجہ سے تھا اور آپ اس کے جنازے پر نہیں گئے. تو اس واقعے سے استدلال کیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خیر پتہ چلا کہ یہ چونکہ قتل کیے گئے اور یہ وہیں پر موجود تھے, یعنی کونیا شہر میں, تو وہیں پر ان کا مزار بنایا گیا. اور یہ مزار جو ہے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج بھی مرجع الخلائق ہے. لوگ وہاں آتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں. اور اگرچہ کہ دنیا میں آج جو شہرت ہے شرق و غرب میں مولانا جلال الروم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے, مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ ان کی شہرت نہ ہو, بلکہ خواص میں معروف ہیں. علماء طلبہ ان کو جانتے ہیں, ان کی کیا علمی حیثیت تھی, روحانی حیثیت تھی. اگلے قسط میں آپ جان سکیں گے کہ یہ کس طرح مولانا روم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے.
مولانا روم کے دیس میں,
اللہ نہ چاہ تو اگلے قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں.
مولانا روم کے دیس میں.